पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय पुण्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिका कदायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयं मुदीरये नक्षत्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामने गौराकृषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदिगौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णवल्ला मंदिर स्थान वृंदावन में प्रातःकाल के श्रीमद्भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 19वां अध्याय पृथ्वी महाराज के यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ पृथ्वी महाराज 99 कर चुके हैं और ये 100वां यज्ञ है, तो फिर पृथु महाराज सतकर्तु हो जाएंगे। सत का मतलब 100, कर्तु का मतलब यज्ञ करने वाला। जो 100 यशों में यज्ञ करता है वो इंद्र के पद के ऊपर आसीन हो सकता है, उसको इंद्र चुना जा सकता है। जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ करे वो क्वालिफाइड है इंद्र होने के लिए। मिले ना मिले पोस्ट वो दूसरी बात है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन है। तो जो इंद्र है उसको तो परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी पोस्ट जाएगी तो वो इंद्र उस यज्ञ को यज्ञ विघ्न डालना चाहता है। ये प्रसंग चल रहा है। तो पहले तो ये समझना चाहिए चौथे स्कंद का नाम क्या है, कभी देखा है? फोर्थ कैंटो कठोरता जी ने नाम क्या रखा है? क्रिएशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। क्या नाम है और इसका हिंदी में क्या नाम हो गया? देखो हिंदी के हिंदी में नाम हो गया चतुर्थ आश्रम उत्पत्ति। आश्रम शब्द ठीक नहीं है, चौथी सृष्टि। पहली सृष्टि भगवान विष्णु करते हैं, दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, तीसरी सृष्टि शत्रुपा और स्वयंभू मनु करते हैं, और चौथी सृष्टि स्वयंभू मनु के संतान के द्वारा होती है। तो इसमें ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन है, जो उत्तानपाद का पुत्र है। तो ये चौथी हुई ना, ये चौथी सृष्टि हुई ना। पहली सृष्टि सर्ग जो भगवान विष्णु करते हैं, सारे भौतिक 24 तत्व जीवात्मा, उनके कर्म, काल का प्रभाव, ये सब भगवान की तरफ से दिया जाता है। ब्रह्मा जी केवल कर्मों के अनुसार जीवों को अलग योनियां देते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी के स्वयं मनु की और शत्रुता की सृष्टि, उसके दो पुत्र और 3 पुत्रियां और उसके वंश का वर्णन। तो ये चौथे स्तर की सृष्टि है। तो पृथु महाराज अयोनिज है, किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए हैं। ये वैन के शरीर के हाथों के मंथन से, सीधे हाथ से पृथु और उल्टे हाथ से अर्ची का प्रकट हुआ है। तो ये अयोनिज है, ये किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए। और भगवान के शक्ति अवेश अवतार माने जाते हैं, शासन सुचारू शासन चलाने के, अच्छे राजा का कार्य करते हैं। 11 अध्याय में पृथु महाराज का वर्णन है, चौथे स्कंद में 11 अध्याय में। 13 अध्याय शुरू होता है, हम 19 में पहुंचे हैं, 6 अध्याय हो गए, अभी और 4-5 अध्याय में चलेगा। पृथु महाराज के विशेष कार्य क्या है जो सराहनीय है? पहला तो उन्होंने सारे जीवों के पालन पोषण की व्यवस्था की। राजा होने के नाते सारे जीवों का, पशु पक्षी से लेकर सांप कीट पतंग से लेकर देवताओं तक, सबको खाने के लिए जो चीज चाहिए उसको उपलब्ध कराया। दूसरा, पृथु महाराज ने वर्ण आश्रम व्यवस्था से गांव बसाए शहर बसाए, नहीं तो लोग चलते रहते थे, कहीं बसते नहीं थे। तो पृथ्वी महाराज ने पहली बार शहर और गांव बसाए, ब्राह्मण शिक्षा से, क्षत्रिय रक्षा से, वैश्य वाणिज्य गौ रक्षा कृषि से और सेवा वाले तीन वर्णों की सेवा से अपनी आजीविका का निर्वाह करें, ये पृथ्वी महाराज ने काम किया। तीसरा, पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को जो ऊपर नीचे थी उसको समतल कर दिया, सीधा कर दिया। तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी कर ली ताकि इस पृथ्वी के ऊपर लोग सुख से रह सकें और खेती आदि हो जिससे सबका निर्वाह हो। पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त की एक दृष्टि से, पृथ्वी के ऊपर विजय कर स्थान के ऊपर विजय प्राप्त की। पृथ्वी स्थान है जिसके ऊपर सृष्टि बनती है, उस पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी महाराज ने विजय प्राप्त की और पृथ्वी ने गाय के रूप में सारों के लिए भोजन की व्यवस्था की। फिर पृथ्वी महाराज ने सो यज्ञ कहां किए, सरस्वती नदी के तट पे, जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं, वहां उन्होंने अनुष्ठान किया यज्ञ का। हाँ, ये ब्रह्मावर्त कहां है, सरस्वती पूर्वमुखी कहां बैठी है, उत्तम कहां ये यज्ञ, ये जगह कहां है, ब्रह्मावर्त किसको कहते हैं, हाँ बद्रीनाथ ब्रह्मावर्त नहीं, वो बद्रीनाथ है। ब्रह्मावर्त सरस्वती वहां दिखती नहीं है, ब्रह्मावर्त किसी को ध्यान है, ब्रह्मावर्त किस स्थान को कहते हैं, हाँ ना नहीं पुष्कर में नहीं, कभी कानपुर जाते हैं तो जहां गंगा के तट पे वो बिठूर है, कभी कभी उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं, तो ये ब्रह्मावर्त का स्थान है। जैसे गंगा जमुना के बीच वाला हिस्सा जहां सरस्वती से मिलते ये पूरा क्षेत्र ब्रह्मावर्त, ऐसा संभव है कि ये ब्रह्मावर्त कहलाता है। तो वहां पृथ्वी महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, सफल किए और उसने अपना पुरोहित चुना अत्रि ऋषि को, अत्रि ऋषि यज्ञ करा रहा था, 99 यज्ञ पूरे हो गए, अब आखिरी यज्ञ हो रहा था। इस यज्ञ का समाचार पहुंचते इंद्र को भय होने लगा कि एक और कोई इंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। इसे इसे पता लगता है कि देवताओं में ईर्ष्या होती है, तो अब इंद्र ने क्या किया, घोड़ा चुराने के लिए आए यज्ञ का। अश्वमेध का मतलब अश्व घोड़ा, यज्ञ में कृपा जी लिखते हैं उस घोड़े को मंत्रों से जब यज्ञ में अर्पण करते थे तो एकदम घोड़े को नया जीवन मिलता था और वो अपने घोड़े के जीवन से ही मुक्त हो जाता था और उसको उत्तम कोटि का जीवन मिलता था, ये उस यज्ञ की सिद्धि होती थी, वो सब देखते थे उसको। तो अब सब देवता भी आते हैं यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए और यहां लिखा है कि भगवान विष्णु भी साक्षात ब्रह्मा अपने सारे गणों को लेकर, देवताओं को लेकर, गंधर्व आदम भी सब आए थे, ऐसा यज्ञ का वर्णन है। उन यज्ञ में तो साक्षात देवता आया करते थे। तो इंद्र ने अपना वेश बदल दिया, कौन से वेश में इंद्र आया, सन्यासी के वेश में, और घोड़े को चुराया और आकाश मार्ग से ऊपर जाने लगा। किसी ने देखा नहीं तो अत्रि ने देख लिया, ऋषि था, त्रिकाल ऋषि था, उसने देख लिया। जैसे अत्रि का अर्थ होता है तीनों गुणों से परे, जो तीनों गुणों से परे है उसको सब दिखता है। तो अत्रि ने जब देखा तो अत्रि ने पृथ्वी महाराज के पुत्र को कहा कि जाओ घोड़े को जो ले रहा है इसको मारो, घोड़ा वापस लाओ। तो ये श्लोक हम जो पढ़ेंगे इसमें अत्रि बोल रहे हैं पृथु के पुत्र को कह रहे हैं जो घोड़ा ले जा रहा है उसको पकड़ लो मारो। फिर क्या होगा प्रक्रिया, ये श्लोक 22 तक जाएंगे, आज 13 श्लोक पढ़ेंगे। इन श्लोकों में तात्पर्य नहीं है और 22 श्लोक में तात्पर्य है, तो हम इस पहले श्लोक को पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं कहां खड़े हैं आप, पृथ्वी की यज्ञशाला में खड़े हैं, आपको बुलाया है, बैठो देखो अब यज्ञ के अंदर निधन हो गया, घोड़ा गुम हो गया, तो किसी को पता नहीं कि यज्ञ में सब माल खाने को जाते हैं, किसका माल जाता है किसी को दिखता नहीं है, तो देवता का अपना हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जो पुरोहित होता है, पुरोहित का अर्थ होता है अपने यजमान का हित करने वाला, जो अपना यजमान है उसका हित करे उसको पुरोहित बोलते हैं। तो अत्रि अपने यजमान का हित करना चाहता है, पुरोहित जिसको जिसके लिए यज्ञ किया है उसका हित करे, उसका भला करे, ये पुरोहित का अर्थ होता है। तो आज अत्रि ने देखा है तो अत्रि बोल रहा है, तो आइए हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। इस श्लोक को आप ऐसे देखिए कि यज्ञ कुंड का घोड़ा बंधा हुआ है, कहां बंधा हुआ है, एक लकड़ी के खूंटे में बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है, सोने की जंजीर से बंधा हुआ है। जंजीर कैसी है, सोने की है, घोड़ा बंधा हुआ है और वो घोड़ा अचानक वहां से गायब हुआ है और किसी को दिखा नहीं क्योंकि सब यज्ञ के मूड में है, लेकिन पुरोहित को दिखा है। तो पुरोहित ने सावधान किया अत्रि के पुत्र को कि जो घोड़ा ले जा रहा है इसको पकड़ो, ये नहीं बताया कौन ले जा रहा है। तो अब आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। अत्रिणा चोदितो हन्तुम् पृथु पुत्रो महारथः अन्वधावत संक्रुद्ध तिष्ठ तिष्ठ इति चाब्रवीत् अत्रिणा चोदितो हन्तुम् पृथु पुत्रो महारथः अन्वधावत संक्रुद्ध तिष्ठ तिष्ठ इति च ब्रवीत् अत्रिणा चोदितो हन्तुम् तीर्थो पुत्र महारथः अनवधावत संक्रुद्ध तिष्ठ तिष्ठ इति चाब्रवीत्। आवृत्ति कीजिए। अत्रिणा चोदितो हन्तुम् हन्तु पुत्र महारथः Thank you. तो ये मैत्री जी कथा बता रहे हैं, रुद्र जी कह रहे हैं, ये मैत्री जी का श्लोक है। मैत्री कहते हैं जब अत्रि ने ऐसे देखा तो अत्रि के द्वारा क्या उदितो उदित किया गया, उकसाया गया, उठो किस क्या करने के लिए, हम तुम मारो। किसको कहा गया? बहुत से लोग यज्ञ में बैठे थे, पृथ्वी पुत्र को कहा गया। पृथ्वी पुत्र उसमें क्या विशेषता थी कहा गया? महारथ था, तो बड़ा महारथी था। तो महारथी तो हम महाभारत से जानते हैं कि अकेला हजारों रथों से लड़ सके, तो पृथ्वी का कुटुंब पुत्र महारथी था। तो अत्रि ऋषि ने पृथ्वी के महारथी पुत्र को उदित उकसाया, प्रेरणा दी, उठो उठो मारो, ऐसी इशारा किया होगा, घोड़ा नहीं देखो देखो मारो जाओ पकड़ो। तो क्या हुआ? ये तो अत्रि ने कह दिया। अब हुआ क्या? तो पृथ्वी के पुत्र ने क्या किया? जो घोड़ा लेके तो भागेगा ना, पहले तो घोड़ा ही भागने वाला ले जाएगा, वो तो घोड़े के साथ भागेगा। घोड़ा भागने के लिए होता है, धावता का मतलब भागना दौड़ना, और अनुधावता का मतलब उसके पीछे दौड़ना। तो घोड़े के साथ जो इंद्र दौड़ रहा था, पृथ्वी का पुत्र उसके पीछे दौड़ा। तो कैसे दौड़ा, कैसे दौड़ा? घोड़े के ऊपर दौड़ा, रथ के, महारथी है तो रथ के ऊपर दौड़ा। जब महारथी कहां है तो रथ में दौड़ा, और इंद्र भी रथ में जा रहा है। वो भी कैसे घोड़े को ले जा रहा था, लेके भाग रहा था घोड़े को, और ये पीछे उसके भागा। कि रथ में भागा के ऐसे ही भागा, ऐसे देखा नहीं, अनुधावतो दौड़ते के पीछे दौड़े। बोला ऐसे खुशी से दौड़ रहे थे, उन्होंने नहीं, संक्रोधित बहुत क्रोधित थे, दौड़ भी रहे थे और संक्रोधित बहुत क्रोधित थे। क्रोधित इसलिए थे कि आखिरी यज्ञ है, अंतिम देना है, फल मिलने वाला है, और हमारे घर में इस वक्त में ऐसी स्थिति आ गई है। तो क्या बोला दौड़ रहा था इतने क्रोध में, कैसे पता लगा क्रोध में था? जब दौड़ते हुए आदमी क्रोध में कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो जो बोल रहा था वो कहता तिष्ठ तिष्ठ, बोला रुको रुको, कहां भाग रहे हो? ये जो कह रहा था उसकी बोलने से, उसकी आवाज से पता लगता था कि वो क्रोध में है। रुकिए भाई, ऐसे नहीं बोलता है, रुको। तो कहने का जो भाव था उससे पता लगता था कि वो बहुत क्रोधित है। अब इसका अर्थ समझ में आया? अत्रि ऋषि, अब मैं पढ़ता हूं प्रभुपाद जी के द्वारा। जब अत्रि मुनि ने राजा पृथ्वी के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने के लिए उसका पीछे पीछा करने लगा। ये तो साहित्य भाषा में इसका अर्थ है, सीधा इसका अर्थ समझ में आया। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य एक विषय के ऊपर है कि क्षत्रिय किसको कहते हैं, क्षत्रिय का क्या गुण होना चाहिए। तो ये सारा प्रभुपाद जी का तात्पर्य क्षत्रिय वर्ण के गुणों का वर्णन है। और हमको हमारी संस्था में क्षत्रियों की आवश्यकता है, इसलिए इस गुणों को सुन लीजिए, जिसमें ऐसे गुण है वो तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक है। यह घोड़ा तो नहीं, लेकिन यह बहुत सी चीजें जो लोग उठा के ले जा रहे हैं हमारे यज्ञ से भी, तो कोई महारथी हमको चाहिए। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब कोई क्षत्रिय अपने शत्रु को ललकारता है तो तिष्ठ तिष्ठ शब्दों का प्रयोग करता है। इसका अर्थ है कि क्षत्रिय पहले तो छुटके नहीं लड़ते हैं, पीछे से नहीं लड़ते हैं, बुलाते हैं कि आइए लड़िए। और अगर कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर रुको रुको लड़ो जाओ मत। तो ये क्षत्रिय का बोलने का जो शैली है वो जब युद्ध भूमि में लड़काता है तो क्या आइए आइए सामने हो जाइए खड़े हो जाइए। लड़ते हुए क्षत्रिय युद्ध भूमि से भाग नहीं सकता, ये क्षत्रिय का दूसरा लक्षण है। पहले तो ललकारता है कि आइए मुझसे लड़िए, और फिर कहने के बाद भाग नहीं सकता। भागना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। जो भागता है वो क्षत्रिय नहीं है। इसलिए क्षत्रिय जब युद्ध भूमि में जाते थे ना, पहले अगर वो युवक विवाहित नहीं है तो उसकी मां उसको तिलक करती थी, आरती करती थी और कहती थी बेटा अगर तुमने मेरा दूध पिया है तो लाज रखना, पीठ के ऊपर घाव हो तो मेरे घर में नहीं नहीं आना, और छाती पे घाव हो तो मेरे घर में आ सकते हो, और वीर गति को प्राप्त कर हो गए तो मेरे दूध का तुमने कर्जा उतार लिया, ये मां कहती। और ऐसे कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ जब शांति दूत बन के गए थे तो महारानी कुंती ने कहा था, कृष्ण अर्जुन और भीम को कहना कि क्षत्रियाणी जिस दिन के लिए पुत्र को जन्म देती है वो दिन आ गया है। इसलिए बार बार अर्जुन जो कहता था मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण कहता हे पिता पुत्र, वो उनको याद दिलाया था कि तेरी मां ने जो तुम्हारे को संदेश भेजा है उसको तुम ना करोगे क्या, तुम मां के दूध को लगाओगे क्या। ये पृथा पुत्र सबसे ज्यादा कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ के नाम से संबोधन किया है गीता में, पहले नंबर पे पार्थ फिर कौन थे, बाकी सब नाम बाद में लिए, और सबसे नाम ज्यादा पार्थ है जिनके भेज देना। दूसरे नंबर पे कौन थे है कि मां के वचन को क्षत्रिय के जो शादी शुद्ध होते थे जो विवाह उसकी पत्नी उसकी आरती करके तिलक लगा के हाथ से तलवार देती थी, खड़ग देती थी, अस्त्र शस्त्र देती थी, और वो भी ऐसे कहती थी वीर गति से छाती के ऊपर घाव खाना, पीठ पे घाव खाओ तो मेरे दरवाजे पर मत आना। ये क्षत्रियों को घर से भेजने वाले ये शिक्षा देते थे, ये क्षत्रिय की पहचान हुआ करती थी। और क्षत्रिय का धर्म बहुत विलक्षण धर्म है, तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाती, भागते नहीं है, कभी रणभूमि से भागेगा वो क्षत्रिय नहीं होगा। राड पड़ी रजपूत चुपैनी तुरी चुपैनी बाघ उठाया, जब लड़ाई का डंका बजता है तो क्षत्रिय होता है छुपा नहीं रहता है, अपना तलवार उठा के मैदान में आ जाता है, वो ये नहीं कहता किसकी तरफ से लड़ना है, लड़ने का मौका आ गया इसको गंवाना नहीं है, जिसकी तरफ से भी लड़ना पड़े। महाभारत में कितने लोग आए थे किसके तरफ जाने, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं, ऐसा मौका है। जैसे फीस का अनाउंसमेंट होता है तो सब लोग कहते चलना है, ये ब्राह्मण के लिए जैसे फीस के लिए आजकल के ब्राह्मण पुराने जमाने ब्राह्मण अपने बस खाली अपना घर से लाते थे भोजन के लिए अपना, तो सब गांव में देखो तो बर्तन लेके जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं फीस है, तो पता लगता था। वृद्ध में कहावत है कि अगर मालपुए का फीस है तो 10 कोस तक लोग जाते हैं, 20 किलोमीटर तक तो चल के चले जाएंगे, तो ऐसा तो, और अगर हलवा आदि होगा तो 2 किलोमीटर तक केवल जाते हैं, तो फीस की भी वैरायटी होती है, तो उतना तेजी से लोग जाते हैं, उतनी दूर तक जाते हैं। जैसे ब्राह्मण को यज्ञ और फीस में जाने की इच्छा होती है, ऐसे क्षत्रिय को युद्ध के लिए मौका मिल जाए तो फीस कभी हटता नहीं है, और जो अच्छा घोड़ा होता है उसकी जरा आप लगाम को हाथ लगाओ तो वो चलना शुरू करेगा, उसको डंडा नहीं, उसको पीटने की जरूरत नहीं होती है, जो पीटता है वो गधा होता है, घोड़ा होता ही नहीं है, पीटने से चले वो गधा, जो बाघ उठाने से चले वो घोड़ा। ये श्लोक है कुछ जो क्षत्रियों के महाराज भर्तरी के लिए गाया हुआ है। वो अपने घर में जब भिक्षा लेने आया ना तो कहा कि आपका साधु का वेश है लेकिन राजा इसमें छुपती नहीं है, जैसे छत्री नहीं छुपता है ऐसे आप कैसा भी वेश करो, तो इंद्र कैसा भी वेश करे वो इंद्र छुपता नहीं है, कैसा भी वेश करके आए इसका भाव दिख ही जाता है। तो क्षत्रिय की दूसरी पहचान महाप्रभुपाद लिखते हैं कि वो कभी रणभूमि से भागता नहीं, पलायन नहीं करता है, ये भगवद गीता में अपलायन है, पलायन नहीं करता है रणभूमि से, किंतु जब कायतावश कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि से शत्रु को अपनी पीठ दिखाकर भागता है तो उसे तिष्ट तिष्ट शब्दों से ललकारा जाता है। कभी कभी कोई क्षत्रिय कायरतावश अगर भागेगा तो दूसरा कहेगा रुको रुको कहां जा रहे हो, असल में उसको क्षत्रिय धर्म की याद दिलाना है,
रुको रुको कहने का मतलब भागना तेरा धर्म नहीं, कहां जा रहे हो, तो क्षत्रिय हो तो रुक जाओ, ये उसको कहा जाता था। जब विराट युद्ध में विराट महाराज का जो सेनापति था उसका नाम था क्या नाम था विराट के कीचक, क्या नाम था कीचक, वो बहुत बड़ा शक्तिशाली था महाराज, विराट का सेनापति था और साला भी था ऐसे लगता है, और महाराज उसका आदर करते थे, आदर शब्द का अर्थ है उससे डरते थे, आदर डर का मतलब धर्म, और उनके पास एक साल के लिए पांडव अज्ञातवास में रहे थे, छुप के रहे थे, तो द्रौपदी विराट की महारानी के बाल बनाती थी, सैंद्री बनती, भीम भोजन भोजनालय में भोजन बनाता था, और अर्जुन एक साल के लिए हिजड़ा हो गया था शराब के कारण स्वर्ग के, वो महाराज विराट की पुत्री उत्तराखंड गान विद्या सिखाता था, नृत्य और गान सिखाता था, और नकुल और सहदेव वो भोजशाला को देखभाल करते थे। तो द्रौपदी के ऊपर कीचक का दोष दृष्टि हुई तो उसने कहा मैं तो गंधर्वों की पत्नी हूं, उसने भीम और अर्जुन को बता दिया कि ऐसे ही ये मेरे को परेशान कर रहा है, तो दोनों ने मिलकर कहा कि इसको आप भुलाओ कि आप हमसे मिलने आ जाइए, वहां मिलने आइए जिस हाल में नृत्य सिखाया जाता है, वहां द्रौपदी तो थी नहीं और भीम जी ही पहन के साड़ी बैठे हुए थे इंतजार करने के लिए, तो जैसे कीचक अंदर आया तो समझ के तो मुझे बुलाया है, लेकिन जैसे घूंघट उठाया तो भीम ने देव मारा मुक्का पहला ही, अब तो दोनों के बीच में ऐसी मारा मारी हुई, अर्जुन उधर ढोल जोर से चीखने लगा, ऐसा मृदंग कीचक आवाज लड़ाई का बाहर नहीं जाना चाहिए, और कीचक मारा गया, और सुबह ये पता चला कि गंधर्वों ने कीचक को मारा होगा। ये समाचार जब दुर्योधन को पहुंचा तो दुर्योधन ने कहा कीचक को मारने की शक्ति एक तो मुझ में है, पहले तो अपना अहंकार तो था ही, और एक तो मैं मार सकता हूं, मैं तो उधर गया नहीं, दूसरा बलराम भी मार सकते हैं वो तो द्वारका से आए नहीं, तीसरा भीम मार सकता है, तो चौथा कोई इसके बराबर का योद्धा है नहीं पृथ्वी के ऊपर, इसका मतलब है कि पांडव यहां छुपे। कीचक के मरने से पता लगा पांडव के छुपने, तब दुर्योधन ने आक्रमण किया विराट के नगर के ऊपर दो तरफ से, एक तरफ से तो कुछ राजकुमारों को कहा तुम जाके आक्रमण करो, तो उस वक्त महाराज युधिष्ठिर जो उनके साथ चौसर खेलते थे भीम ये सब उनके साथ गए और उस युद्ध में तो विजय प्राप्त हुई, तब दूसरी तरफ से पूरी पांडवों की सेना, कौरवों की सेना, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण अश्वत्थामा कृपाचार्य पूरी सेना की सेना गायें लेकर गायों को चुरा के जा रही थी विराट की, तो अकेला विराट का एक बेटा घर में बैठ गया था पुत्र कुमार, उसने क्षत्रिय के मैं अकेला हूं तो क्या हुआ, क्षत्रिय हूं मैं अब रणभूमि में जाता हूं, रथ के ऊपर चढ़ा, तो द्रौपदी का आप लड़ने जा रहे हो ये जो ब्रह्माला है ना ये अच्छा सारथी है इसको ले जाओ तुम्हारा सहायता करेगा, तो अर्जुन सारथी बनके ब्रह्माला के रूप में वहां गए, लेकिन जब युद्ध भूमि में उत्तर कुमार ने सामने भीषण द्रोण के ध्वजाओं को देखा तो भागने लगा, तब कृष्ण का कृष्ण कृष्ण रुको रुको कहां जाते हो, उसने इतना भी नहीं कहा, उसने पकड़ लिया पांव से कहां भाग रहे जा कहां रहे रुको ये क्षति भागते थोड़ी, तो ये जो रोकने का है ये भगवान श्री कृष्ण ने उस रोकते को रोका, ये देखो सामने खड़े कोई बात नहीं तुम लड़ोगे नहीं तो तुम यहां बैठ के रक्त चला सकते हो ना, उस वक्त अर्जुन ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का आवाहन किया और अर्जुन रथ के ऊपर बैठा और उत्तर कुमार सारथी बने, और तब अकेले अर्जुन ने सारे कौरवों की सेना को हरा दिया, इसलिए जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्ण ने कहा मैं तेरा सारथी हूं। तू जब उत्तर का सारथी बना था, उत्तर भाग रहा था, उसने क्या, तुमने क्या किया था याद है? उसको पकड़ा था ना। अब तुम अब भागेगा तो मैं तेरे को पकड़ूंगा। जो तुमने किया वो तुमसे होगा। तुमने भी उत्तर कुमार से ऐसे ही किया था ना, तब तुम सारथी थे, अब मैं सारथी हूं। तुम भाग रहे हो, तुम लोग क्या होगा? ये एक भाव ये ही था उसके रोकने में। तो तिष्ट तिष्ट भगवान का रुको रुको कहां जाते हो? तो ये क्षत्रिय का धर्म होता है दूसरे क्षत्रिय को अपने धर्म से गिरने से बचाए। तो ये जो जो घोड़े को चुरा के जा रहा था उसको क्षत्रिय मान रहे थे, क्योंकि पहले जमाने में क्षत्रिय गाय घोड़ा ही चुराते थे। वो भी गलिया चुराने आए थे, पशु सबसे बड़ा धन होता था, उस धन को चुराते थे एक दूसरे का, राज के ऊपर आक्रमण करते थे, नहीं तो धन चुराते थे, दो ही काम करते थे। तो रोको रोको ऐसे कहा जाता है। ये क्षत्रिय का दूसरा धर्म है। इसका अर्थ का उपाय लिखेंगे, क्योंकि पीछे से मार नहीं मारेगा। अगर क्षत्रिय होगा तो पीछे से मार नहीं मारेगा, तो भागते हुए तो ऊपर बाढ़ नहीं चलाएगा, तो कहेगा रुको रुको सामने हो जाओ फिर लड़ूंगा। सच्चा क्षत्रिय अपने शत्रु को कभी ना तो पीछे से मारता है और न कभी युद्ध में पीठ दिखाता है। अब क्षत्रिय के दो लक्षण और हो गया है, न तो किसी को पीछे से मारेगा और न ही किसी को पीठ दिखाएगा। पीछे से किसी को नहीं मारता, और माताएं बच्चों को कैसे मारती हैं? पीछे से मारती हैं, जाके दो रुपये कहां से पकड़ती हैं? पीछे से। तो क्षत्रिय भाव नहीं है नज्जा नहीं है, तो वो पीछे से जाके पकड़ती है, सामने से इसको मुंह देख के उसको दया आ जाती है। पीछे से पकड़ लेने दया कम आती है। और क्षत्रिय को पीछे किसी का पीठ देखता है तो दया आती है, बेचारा कहीं कहां भाग रहा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए लोग जब कोई युद्ध नहीं करता तो चूड़ियों पहन के क्यों बैठ गए हैं? इसलिए स्त्री के लिए ये कहा जाता है कि तुम क्यों नहीं युद्ध के लिए उठ रहे? क्योंकि वो बेचारी पीछे से उनको मारने में अच्छा लगता है, आगे से नहीं मारते, अभी भी नहीं मारते। कोई मुश्किल से ऐसे हो तो इसलिए क्षत्रिय न पीछे से मारता है और न पीठ दिखाता है। हरे कृष्ण। आजकल के युग में तो क्षत्रिय कोई है ही नहीं, सब छुप के मारते हैं, पीछे से मारते हैं, रात को मारते हैं, सोए को मारते हैं। ये बहुत अधर्म का युद्ध हो जाता है। तो इसलिए ये युद्ध सारे अधर्म के हैं। तो आगे की लक्षण का जो लिखते हैं, क्षत्रिय नेम तथा अनुभव के अनुसार वो या तो विजयी होता है या युद्ध भूमि में मरता है। अब क्षत्रिय लड़ने जाएगा तो घर से ही निर्णय लेकर जाएगा, मैं या तो विजयी होकर आऊंगा या वीर गति को प्राप्त करूंगा। तीसरा रास्ता है नहीं, बीच का रास्ता अस्पताल में टांग लटका के सोने वाला क्षत्रिय नहीं होता नहीं, या मरो या मरो। ये क्षत्रिय की पहचान है कि युद्ध भूमि में उसको क्या करना है, या विजय ही प्राप्त करना है। अगर विजय नहीं प्राप्त किया तो मेरे शव के ऊपर उसकी विजय हो सकती है, मेरे जीते भी उसकी विजय नहीं हो सकती है। ये क्षत्रिय का वचन होता था, प्रण होता था कि मेरे जीते भी विजय नहीं हो सकती। ये क्षत्रियों की भाषा हुआ करती थी। ऐसे क्षत्रियों की कभी तो बहुत पुराने जमाने की नहीं, अभी जो मुस्लिम शासन में चित्तौर के ऊपर जितने बच्चे थे, क्षत्रिय के जितने बच्चे थे, वो सबको सन्यासी वाला वेश, पीले कपड़े कौन से पहनाए, भव्य कपड़े पहनाए। आप आहुति देते यज्ञ में देते, ऐसे आपको जाना है, अब वापस नहीं आना है, ऐसे विदा किया घर से। उन सबको विदा करने के बाद स्त्रियों ने वो बड़ी अग्नि जलाई और उसके अंदर जुहर किया। ये क्षत्रिय का इतिहास अनोखा है, ऐसा इतिहास कहीं और दुनिया में मिलेगा नहीं। सारे जितने घर में 8 साल से ऊपर के बच्चे थे उनको मनोदंड दिया और जो अक्सर कर दिया कि तुम्हें लड़ना है और मरना है, अब इसके बाद आपको वापस नहीं आना है। ये आतंकवादी वाला नहीं है, वो भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो जो मरे छोए हुए को मारते हैं, चुप के मारते हैं, वो भी घर से ऐसे ही जाते हैं कि मरने जाते हैं, लेकिन क्षत्रिय नहीं। ये तो दुष्ट का काम होता है, वो धर्म की रक्षा के लिए मरने के लिए जाते हैं। दोनों में ये दोनों आत्महत्या कैसे हो गए, सुसाइड एंड स्क्वाइड हो गया। असल में ये जाना है तो मरना है या विजय प्राप्त करना है। लेकिन चोरी छुपी नहीं, सरेआम खुलेआम सीना खोल के लड़ते थे। ये कितने का ये अद्भुत तो ऐसी इस्तेहास है, वो सुनहरी शब्दों में ऐसा इस्तेहार अभी करें। ये तो 200 सालों का इतिहास है, 300 सालों का, 400 सालों का इतिहास है, कोई बहुत पुराना इतिहास की बात नहीं कर रहे। छत्री तो स्त्रियों में भी इतना इतना गौरव था, इतना धर्म के प्रति जो है स्वाभिमान था। तो ये बहुत अद्भुत शब्द यहाँ लिखा है कि या तो वीर विजय प्राप्त करेगा, नहीं तो वीर गति को प्राप्त करेगा। उसको कुछ जीवन के अंदर कोई आसक्ति नहीं है धर्म के लिए। युद्ध में आहुति डालनी है, इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जैसे ब्राह्मण को यज्ञ में आहुति डालनी होती है, ऐसे क्षत्रिय को धर्म के युद्ध में आहुति डालनी है। विजयी होगा तो संसार को धर्म के रास्ते के ऊपर चलाएगा, और अगर वीर गति को प्राप्त हुआ तो सदगति को प्राप्त कर जाएगा। तो ये क्षत्रिय के धर्म अद्भुत है, ऐसे क्षत्रियों की इस काम को जरूरत है। ये जो हमारे सिक्योरिटी है, ये क्षत्रिय है असल में। इसको ये पेट भूषण पहनाने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत अच्छा वो जैसे राजा महाराजों को ड्रेस होती थी ऊपर में बड़ी पगड़ी और हाथ के अंदर ऐसा डंडा, तो उसको देख के इतने लोगों को लगे कि ये कोई क्षत्रिय खड़ा है। तो जो खड़े होते हैं ऐसे ऐसे लगते हैं कि अभी भागे। और इतना इनको हम किस दृष्टि से देखते हैं, नौकर है तो हमारी दृष्टि असल में नौकर वाली होती है, और क्षत्रिय राजा की दृष्टि में होते सन्मान्य होता है, वो बड़ा सन्मान्य होता है, उसका भवन भी बड़ा होता है, उसका आसन भी बड़ा होता है। तब वो जीवन में ऐसे क्षत्रिय हमको पैदा करने की जरूरत है। ब्राह्मण तो उसको केवल शिक्षा देगा, लेकिन मान सम्मान वाले हमको क्षत्रिय पैदा करने पड़ेंगे। तब असल में हमारी रक्षा नहीं, प्रचार की प्रक्रिया बहुत तेज गति से आगे चलेगी। देव वर्ण आश्रम में बहुत आवश्यकता क्षत्रिय की है, जो सही माना में सारा व्यवस्था को चला सके, रक्षा व्यवस्था के साथ कर सके, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। अभी तक हम क्षत्रिय बनाने में, अभी श्री कृष्ण को क्षत्रिय के रूप में बांबे के मंदिर में, अभी मंदिर बांबे का बना नहीं था, प्रभुपाद जी ने भगवान श्री राधा रास बिहारी को लाके एक पेड़ के नीचे ऐसे छोटा टीन के शेड में बिठा दिया था कि भगवान बैठ जाएंगे तो अपने आप मंदिर की व्यवस्था करेंगे। तो उस वक्त में कुछ गुंडों को भेजा गया कि इस मंदिर को ही, मूर्ति को यहां से उठा दो, मूर्ति ही नहीं रहेगी, ठाकुर जी का विग्रह नहीं रहेगा तो मंदिर का विचार भी नहीं रहेगा। और गुंडे लोग आए ऐसे समय पे जब कोई नहीं हो, तो उस वक्त एक स्त्री अमेरिकन थी, वो उस वक्त खड़ी थी, तो जब मूर्ति की तरफ जाने लगे तो वो मूर्ति को ऐसे आलिंगन करके खड़ी हो गई। वो उसके बाल खींचा, उसको कुछ भी किया उन्होंने, मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दिया। तब तक तो दूसरे भक्त भी आ गए और मूर्ति को वहीं रहने दिया, और तब से राजा रात जाने अपने मंदिर बनाने का पूरा ये योजना बनाया, मंदिर बन गया। तो वो ऐसे हमको चाहिए कि जब आपातकाल आए तो मर मिटने के लिए तैयार हो। एक बार वो जब लातूर का भूकंप आया तो अर्थक्वेक हुई लातूर में, तो मामले में उसका थोड़ा सा झटका आया था। तो जब झटका आया तो सारे ब्रह्मचारी भक्त भाग के नीचे उतरे। तो दूसरे दिन महाराज ने पूछा कि भगवान के पास कोई रुका था? उस वक्त तो सबको अपने सांस बचाने की लगी थी, भगवान के पास एक भी नहीं रुका था। थोड़ा तो ऐसा क्षत्रिय चलिए कि ऐसी स्थिति में भगवान के पास रुके, तो ऐसे क्षत्रियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आप कभी अगर बहुत पुराने स्थान के इतिहास को पढ़ेंगे तो एक बस के अंदर राधा दामोदर को लेके भ्रमण जब करते थे, एक महाराज हुआ करते थे विष्णु जन्म स्वामी, कुछ बदमाश लोग आए और मूर्ति के प्रति कुछ कहा तो महाराज तो उनके पीछे मारने के लिए ऐसे भागे, उनको पकड़ के मारने लगे। किसने पकड़ के महाराज को वापस ले, सन्यासी होते ही ठाकुर जी की रक्षा के लिए तो उसको मारने के लिए जो किया वो जो खड़े थे उन्होंने कहा कि इसको मार ही देता, हमने इसको बचा लिया तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो ऐसा सन्यासी के बाद भी क्षत्रिय के उसका जो स्क्रिप्ट था कि भगवान की रक्षा करने उसमें पीछे नहीं हटा, ऐसे बदमाशों के बीच वहां खड़ा रहा और खड़ा क्या उसको भगा दिया बदमाशों को वहां से मारने के लिए तैयार होते। ऐसे क्षत्रियों की जरूरत है क्योंकि भगवान ठाकुर जी की रक्षा करने वाला तो गुजारे बेचारा आरती कर सकता है, कोई कोई मारने वाला आया तो भैया भाग जाएगा, तो उसके बस की बात नहीं है वहां करने होने की। उसके लिए एक तो क्षत्रिय चाहिए सबने, उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। और ऐसी स्थिति में जब कुछ भक्त नहीं कर सकता है तो फिर भगवान को क्षत्रिय का काम करना पड़ता है, उस वक्त भगवान स्वयं को करना पड़ता है। ऐसे एक बार कुछ बदमाश लोग न्यू वृंदावन में आए, तो क्यों आए वो कथा नहीं करता हूं। आए तो बंदूक लेके आए, बंदूक के ऊपर कुछ लोगों को गोलियां मारी, खून बह रहा था और जो लीडर थे उनको पकड़ के ले गए कि समय तो ऊपर जाके मारेंगे। उसको उठन पट्टी के ऊपर बंदूक रखी हुई है, अब देखा तो ये तो सारे बेचारे ब्राह्मण है, हरे कृष्णा जपते हैं, क्षत्रि की ट्रेनिंग तो इसको दी नहीं गई है। तब दयामयी राधा रानी को अंदर जब गए हाथ लगाने ठाकुर जो, तो क्या एक ऐसा विस्फोट जैसा आवाज हुआ कि सारे भाव के वहां से चले गए। वो जो कंठ जो गढ़ रख के बैठे थे उनके कर्णपट्टी के, उनको वहां से छोड़ के भागे। तब जाके देखा कि राधा रानी को उठा रहे थे तो उसका ऐसा एक आवाज हुआ, थोड़ा सा क्रेक हुआ और ऐसा कोई आवाज हुआ जो सामान्य आवाज नहीं होता है लेकिन बहुत बढ़ता है, और सारे भाग गए। तो जब हमारे भक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो भगवान को ही हथियार उठाने पड़ेंगे। ये सब कुटी वाले भक्त हैं, कुटी वाले भक्त कर रहे कुटी समझते हैं, कुटी राजस्थानी भाषा का शब्द है और पंजाबी भाषा है। कुटी का मतलब हलवा पूरी खाने वाले हैं, लड़ने वाले यार। तो छत्री चाहिए भाई, मर मिटने वाले छत्री चाहिए, ये कोई सामान्य, ये सामान्य ठाकुर जी नहीं। इसलिए पहले साधुओं के लिए नागा बाबा बनाने की जरूरत पड़ गई। नागा का मतलब ये नहीं कपड़े उतार दे, नागा का मतलब है जो मर मिटने वाला हो, जिसके पीछे कोई रोने वाला नहीं हो, जो मरने के लिए तैयार हो धर्म के, उसको नागा कहते हैं। जो साधु की रक्षा करे, मंदिर की रक्षा करे, जो ब्राह्मण धर्म की रक्षा करे, उसको नागा कहते हैं। असल में नागा का मतलब है जिसने अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए दे दिया, उसको असल में नागा कहते हैं। नागा नागा की आवश्यकता सेना के रूप में हुई थी, ये क्षत्रिय के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं रह गई, पुलिस खड़ी है उसकी जगह पे, तो इनका हमारा कोई काम नहीं है तो क्या करें हम, तो बेकार हो जाएगी। असल में क्षत्रिय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये वर्ण आश्रम व्यवस्था में इसकी बहुत आवश्यकता है। क्षत्रिय को जन्म देने के लिए माताओं को आह्वान करना पड़ेगा ऐसे पुत्रों का जो धर्म की रक्षा करे, बहुत जरूरत है धर्म की रक्षा की, ऐसे धर्म को बढ़ाना है तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी ना। तो ये क्षत्रियों के वर्णन प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है, कोई बेकार नहीं लिखा है, ये प्रभुपाद का इससे ऐसे ध्वनित होता है कि ऐसे भक्तों की भी हमको आवश्यकता है। जो इंद्र जैसे देवता भी अगर आक्रमण करने आए तो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, सामान्य आदमी की बात नहीं कर रहे कि देवताओं के आक्रमण में भी रक्षा की हिम्मत रखते हैं। स्वर्ग का राजा होने से यद्यपि राजा इंद्र अत्यंत सम्मानित था, किंतु यज्ञ का घोड़ा चुराने से वो पतित हो गया था, अतः क्षत्रिय नैनों की अवहेलना करके वो भागा जा रहा था। राजा पृथ्वी के पुत्र ने पृष्ठ शब्दों से उसे दर्शाया। भाई इंद्र तो क्षत्रिय है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डेली गार्ड है, ऊपर लिखते हैं वो शासक है, जो कथा वाले नहीं है, ये प्रसाद वाले अभी भर रहे हैं, प्रसाद वाले भर रहे। अरे भैया बढ़ो तो बढ़ो, यहां आप इसके बाद हथियार करने वाले हैं, रुकना है तो रुको, ये क्षत्रिय की कथा चल रही है, भागना नहीं है। भागना नहीं है, अपनी प्लेट के ऊपर बैठना है, यहां तो फिर पर्चियां चलेगी। हरे कृष्णा। यहां श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा होता है। हमारी इच्छा थी कि ये जो बाकी सारे श्लोक है ये पढ़ लें, लेकिन अब छतरी बनाने की इतनी आवश्यकता लग रही है कि कुछ करना चाहिए, ऐसी योजना बनानी चाहिए, अपने रक्षक बनाने की बहुत जरूरत है। तो छत्री बेटे को कहा, किसने कहा, किसने, अत्री ने कहा। ये इससे ज्यादा समझने का है कि ब्राह्मण कहेगा तब धर्म का युद्ध होगा, अपने आप करेगा तो स्वार्थ का युद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि जाओ इसको मारो, इसलिए ये मारना धर्म के अनुकूल था, धर्म के प्रतिकूल ना। अत्री ने कह दिया हम तुम, अत्री चोद अत्रियो चोद तो हम तुम, जाओ मारो। अत्री ने कहा रुको मत, ये हुआ धर्म युद्ध, क्योंकि एक ऋषि का आदेश था। तो ऋषियों ने भगवान राम को कहा था कि असुरों का संहार करो, अपनी तरफ से राम ने संहार नहीं कर रहे थे, ऋषियों ने कहा कि इनका संहार करना है। तब राम जी ने इस कार्य किया, दंडकारियों को असुरों से शून्य कर दिया। तो एक बात सीधी ये दिखती है कि ब्राह्मणों को क्षत्रियों को नियम में रखना है, ब्राह्मण क्षत्रिय को नियम में रखते हैं, जब कहते हैं तब धर्म युद्ध कहलाता है, नहीं तो धर्म युद्ध नहीं हो सकती। तो बहुत बड़ी रहस्य की बातें हैं, प्रभुपाद ने इतना छोटा तात्पर्य इसमें लिखा है, सिर्फ क्षत्रिय की आवश्यकता के ऊपर। ऐसे क्षत्रिय जब होंगे उसी को सिलेक्ट करना चाहिए आर्मी आदि में, ऐसे किसी को पकड़ के भेजने से काम नहीं चलेगा। क्षत्रिय एक अपने आप में स्वाभिमान होता है, उसका उसका वर्ण उसको उसको उसके खून में वो चीज होती है, उसको तैयार ऐसे किया जाता है। महाराजा जयपुर को अंग्रेज ने बुलाया इंग्लैंड में कि आइए मीटिंग में, उसने बोला मैं अकेला नहीं जाऊंगा, गोविंद देव जी मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि राजा वो है, मैं तो उनका मिनिस्टर मंत्री हूं। हमारे गोविंद देव जी उस जहाज में नहीं जाएंगे जिसमें पहले कोई चढ़ा हो, तो ब्रिटिश ने नया जहाज बना के भेजा। बोला फिर समय लगेगा, हमारे गोविंद देव जी के साथ हम जाएंगे तो केवल गंगा जल ही एक दो महीने जितना लगेगा, केवल गंगा जल ही हम भगवान का स्नान और भोजन बनना चाहिए और वही हम प्रसाद पाएंगे। तो चांदी के दो बहुत बड़े मटके एक एक 400-300 लीटर का एक एक चांदी का मटका बनाया, तो गंगा जल से भरा। अभी भी जाके जयपुर में देखो, म्यूजियम में वो दोनों मटके पड़े, उसके ऊपर लिखा है कि कैसे बने, कितना टाइम लगा, वो भर के कैसे ऊंटों की गाड़ियों में उस वक्त में ले गए, पानी के जहाज में कहां से चढ़ा उसको, फिर पानी के जहाज में गोविंद देव के साथ जब महाराज जाने लगे तो तूफान रास्ते में आया, तो सब भयभीत होकर महाराज से कहने गए, महाराज बहुत बड़ा भयानक तूफान आ गया है। महाराज ने कहा मैं गोविंद देव जी के साथ बैठूंगा, कुछ भी हो दरवाजा बंद कर दो, अगर तूफान थम जाए तो दरवाजा खोलना। महाराज वहां से भागे नहीं कि तूफान आया है तो मैं किसी नाव में चढ़ो और मेरे को बचाओ, नहीं, बोला गोविंद देव के साथ मैं बैठा हूं, मैं इनकी सेवा में हूं, जो होना है इनकी इच्छा से होना है, मैं यहां रहूंगा, दरवाजा बंद कर दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे हमको। जब तूफान थम गया तब दरवाजा खोला, ये क्षत्रिय का भाव होता है। तो भगवान को ब्राह्मण को क्षत्रिय का भी धर्म होता है कि भगवान की सेवा। देखो ये सारे मंत्र क्षत्रियों के बनाए हुए हैं, पुराने देखो मंत्रों के जितने मंत्र है, एक एक घाट को देखो राजा महाराजा ने बनाया है, राजाओं के घाट है, राजा यहां परिक्रमा करने आया करते थे, वो क्षत्रिय थे जो धर्म के ऊपर चलते थे, ये टोपी पहनने वाले कोई राजा होते थे, उनका उनका राज अभिषेक होता था और मुकुट पहना जाता था, और वो मुकुट पहन के बाहर निकलते थे, वो मुकुट परंपरागत आता था और उस मुकुट के अंदर उनके उनके पूर्वजों के सम्मान समाया हुआ होता था। अब मुकुट भी नहीं है, पहना अभिषेक भी नहीं है, तो राजा कहां से जाए। ये तो वोटू और नोटू वाले राजा है, ये कोई अभिषेक वाले ब्राह्मण का अभिषेक स्वस्ति वाचन से राजा नहीं बने, ऐसे क्षत्रिय की जरूरत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कल से भागवत क्लास 9 बजे से 10 बजे होगी, क्योंकि प्रसाद गणी सब आ जाएंगे तो क्लास शुरू करेंगे तो बहुत से लोग आ जाएंगे, फिर जब बैठ जाएंगे तब कथा करेंगे फिर प्रसाद देंगे। चतुर्पाद की, धूमराज श्रीमद भागवत महात्मा की, तलवार काटे देता है, घर काटे देता है।